अरुणिमा जब कमरे में आई, आस्तिक तब तक जा चुका था। अरुणिमा हैरानी से पूरा कमरा देखती रह जाती है। अभी तो आस्तिक ने उससे काफी मांगी थी, इतनी जल्दी कहाँ चला गया। दूसरी तरफ पृथ्वी का सारा काम खत्म हो गया था। यहाँ उसके हॉस्पिटल का जो सेमिनार होना था, पृथ्वी ने उसे भी अटेंड कर लिया था, और अब उसका यहाँ मन नहीं लग रहा था। वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहता था। सेमिनार से उसने सीधे सिंघल जाने का फैसला किया, इसलिए वो होटल से निकलकर एक प्राइवेट कैब की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कि सड़क के दूसरी तरफ उसने जाह्नवी को देखा है। पृथ्वी हैरानी से उस तरफ देखने लगता है, लेकिन अब वहां पर कोई नहीं था, पर उसे ऐसा लगा जैसे कि वो जाह्नवी ही थी। पृथ्वी पूरी सड़क पर नजर दौड़ा रहा था, लेकिन उसे जाह्नवी दोबारा नजर नहीं आई। पृथ्वी उस तरफ गया भी और उसने वहां ढूंढने की भी कोशिश की, पर जाह्नवी वहां नहीं थी। जब जाह्नवी उसे नहीं मिली तो पृथ्वी ने बेचैन होते हुए कहा, कहाँ चली गई है? लेकिन अपनी इस हरकत पर पृथ्वी ने खुद को ही डांट लगाते हुए कहा, क्या कर रहा है पृथ्वी, चली गई तो जाने दे, तो क्यों उसे ढूंढ रहा है? ये लड़की मुझे इतना इफेक्ट क्यों कर रही है? पृथ्वी कस के अपने बालों को नोचता हुआ वापस अपनी गाड़ी की तरफ आता है और दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ जाता है। दो मिनट बाद ही गाड़ी वहां से चली जाती है। उसके जाते ही एक बिल्डिंग के पीछे छुपी हुई जाह्नवी बाहर निकलती है। दरअसल जाह्नवी ने भी पृथ्वी को देख लिया था, इसीलिए वो पृथ्वी की नज़र में आने से पहले ही छुप गई थी। उदास मन से पृथ्वी की जाती हुई गाड़ी को देखते हुए कहा, आपने बहुत किया है मेरे लिए पृथ्वी जी, आपके बहुत एहसान है मुझ पर, वरना कौन ऐसी लड़की को सहारा देता है, उसकी इतनी मदद करता है, उसकी माँ के इलाज के लिए पूरा खर्चा माफ़ करवा देता है। आप बहुत अच्छे हैं पृथ्वी जी, और शायद आपकी यही अच्छाई मुझे पसंद आ गई, पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है जो वो मुझे आपसे जोड़ सके, लेकिन एक ख्वाब सा ही सही, आपका एक नाम मुझसे जुड़ा हुआ है। ये कहते हुए जाह्नवी अपने मांग में हाथ फेरती है, जिसमें अभी भी पृथ्वी के नाम का सिंदूर उसने लगाया हुआ था। हाँ, वो इसे बालों से छुपाकर रखती है, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब उसने अपनी मांग में सिंदूर ना लगाए हो। जाह्नवी की आंखों से आंसू आ गए थे। उसने पृथ्वी को याद करते हुए कहा, मैं ऊपर वाले से यही मांगूंगी कि आपकी जो भी इच्छा है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए, और मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि आपका एक एहसास हमेशा मेरे साथ रहेगा। जाह्नवी अपने ख्यालों में पृथ्वी के साथ उसके एहसासों को जी रही थी कि तभी कोई जाह्नवी के पास आता है और उसकी बाजू को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, ए जाह्नवी, तू यहाँ क्यों छुपी हुई है? मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। जाह्नवी ने उस आदमी को देखा और गुस्से में उससे अपने बाजू को छुड़ाते हुए कहा, तेरे से कितनी बार कहा है गगन कि इस तरीके से सड़क पर मेरा हाथ मत पकड़ा कर, यहाँ काम से आया है ना, तो जा काम कर। गगन एक बॉडी बिल्डर टाइप का आदमी दिखाई पड़ रहा था, जिसकी मूछें भी थीं लेकिन चेहरे पर शराफत बिल्कुल भी नहीं थी। उसने जीन्स के ऊपर कुर्ता पहना हुआ था और गले में एक गोल्ड की चेन थी। वो जाह्नवी को देखकर कहता है, तुझे किसी ने सिखाया नहीं है क्या कि अपने मंगेतर से कैसे बात करनी चाहिए? जाह्नवी ने घूरते हुए गगन को देखकर कहा, हाँ बिल्कुल सिखाया है कि किसी इंसान से कैसे बात करनी चाहिए, लेकिन जहां तक बात रही मंगेतर की, तो तू मेरा मंगेतर नहीं है, तुझे पहले भी समझा चुकी हूँ और फिर समझा रही हूँ। गगन ने गुस्से में कहा, ऐसे कैसे नहीं हूँ, तेरे बाबा ने और मेरे बाबा ने हम दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। जाह्नवी ने अपनी घूरती हुई निगाहों से गगन को देखकर कहा, हाँ और अब वो दोनों मर चुके हैं और हमारा बचपन भी खत्म हो गया है, अब तो बड़ा हो जा, तुझे इसीलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि मुझे काम के लिए कभी कभी शहर से बाहर जाना होता है और मेरे पीछे माँ की हिफाजत के लिए कोई होना चाहिए, इसलिए अपने दिमाग से ना ये शादी का फितूर उतार दे, क्योंकि मेरी शादी तो वहीं होनी है जहाँ पर महादेव की मर्जी होगी। फिर जाह्नवी पृथ्वी को अपने मन में याद करते हुए कहती है, और मेरे महादेव की मर्जी है कि मैं हमेशा के लिए पृथ्वी जी की बनाकर रहूं, भले ही एक झूठी दुनिया है लेकिन उनका नाम मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरे लिए इतना ही काफी है। वही पृथ्वी धीरे धीरे दिल्ली छोड़ रहा था, लेकिन उसका मन बहुत घबरा रहा था। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था उसका कुछ पीछे छूटता जा रहा है। वो अपने दर्द को महसूस कर सकता था लेकिन उसे समझ नहीं पा रहा था। द रॉयल फैशन हाउस। प्रणाली और सक्षम एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। सक्षम के चेहरे पर मुस्कान थी पर प्रणाली के चेहरे पर गुस्सा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई ड्राइंग को बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर सक्षम, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हें किस तरीके का डिजाइन चाहिए? सक्षम ने शरारती मुस्कान अपने चेहरे पर रखते हुए कहा, प्रणाली जी आप क्यों नाराज हो रही हैं? मैंने कहा ना, मुझे बहुत यूनिक डिजाइन चाहिए, ऐसा डिजाइन जो कभी किसी ने ना बनाया हो, जैसे कि मुझे ग्रीन फ्लावर का ड्रेस चाहिए। प्रणाली गुस्से में अपने टेबल पर हाथ मारते हुए सक्षम को देखती है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है, मिस्टर सक्षम, तलवार ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, फूल नहीं होते हैं। लेकिन सक्षम मुस्कुराते हुए कहता है, एक डिजाइनर इमेजिनरी वर्ल्ड को रंगों की जरूरत कब से पड़ गई? आपने तो अच्छे से अच्छे डिजाइन बनाए हैं, मोर को शुतुरमुर्ग बना दिया है, तो क्या आप ग्रीन कलर के फूल नहीं बन सकती हैं? प्रणाली कुछ कहने ही वाली थी कि तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और कीर्ति अंदर आते हुए कहती है, दी मैं आपके लिए। लेकिन प्रणाली और सक्षम को आमने सामने देखकर कहती है, अच्छा आप मीटिंग में हैं तो मैं बाद में आती हूँ। लेकिन प्रणाली कीर्ति को रोकते हुए कहती है, रुक जा, तो यहाँ क्या कर रही है? कीर्ति उठ जाती है और प्रणाली को देखते हुए कहती है, वो आज आप सुबह नाश्ता करके नहीं आई थी ना, तो अमृता ताई ने कहा है कि आपका खाना ऑफिस में ही भिजवा देने के लिए, क्योंकि एक बार आप काम में लग जाती हैं तो फिर खाने पीने पर ध्यान कहाँ जाता है आपका, आखिर है तो आप भी भाई की परछाई ही। सक्षम अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने कोट को सही करता हुआ कहता है, काम तो होता ही रहेगा प्रणाली जी, पहले आप खाना खा लीजिए। कहते हुए सक्षम केबिन से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ता है कि कीर्ति सक्षम को रोकते हुए कहती है, सक्षम जी आप भी हमारे साथ ही लंच कर लीजिए।